विचार अध्याय भी महाराज शिष्य का वापिस स्थान जाना शोक संख्या से शोक संख्या का अनुवाद जगत तात्पर्य द्वारा कृष्ण स्वामी श्री श्रीमद इसी भक्ति के नाम पर स्वामी शतोपाध्य के द्वारा अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में करने के लिए महाराज ऋषु ने ये सारी कठिन तपस्याएं यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। तात्पर्य कलयुग के लिए ब्रह्म नारदीय पुराण में संस्तुति की गई है, हरर नाम हरर नाम हरर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 2400 घंटे उन नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुरु को नहीं स्वीकार करते वे अन्य प्रकार का छद्म चिंतन पसंद करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि विशुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के अनुसरण की ही आवश्यकता है। शिष्टाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के नाम की जय हो जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इस युग के लिए संस्कृत भक्ति योग पर्याप्त है, किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि पृथ्वी महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक अज्ञानी हैं जो यह दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई जब भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु यह असलियत नहीं है। पृथ्वी महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की, क्योंकि पृथ्वी महाराज ध्रुव के वंशज थे जिन्होंने सतयुग में 36000 वर्षों तक राज्य किया था। जब तक ध्रुव महाराज 1,00,000 वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हों वे 36000 वर्षों तक ऐसे राज्य करते रहे। बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी और सत्ययुग त्रेता तथा द्वापर युग होते कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, फलतः कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति आरिराध विशु कृष्णम अचरत तप उत्तमम भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के लिए महाराज पृथ्वी ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु है कि वे अपने दिव्य नाम से उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम, यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना कृष्ण के सारी तपस्या वृथा श्रम है। श्रम एव ही केवलम भागवत 1:2:8। अतः हमें यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंद बल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइय मन। दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर वृंदावन की पूजा करो, इसमें दिखाया है पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो, किसकी पूजा करो, की पूजा करो, वृंदावन जाकर वृंदावन, यहाँ लिखा इंग्लिश में धाम वृंदावन की पूजा, भज वृंदावन वृंदावन की पूजा, और सदैव भगवान गुरु और वैष्णवों की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करना होता है। इसमें हमें गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उद्देश्य देना होता है और वैष्णवों के पथ का अनुसरण करना होता है। गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। कल के श्लोक में हमने पढ़ा पृथु महाराज द्वारा किस प्रकार से कठिन तपस्याएं की गई, अग्नि जलाई गई, सर्दी में पानी में रहा गया इत्यादि। तो तपस्याओं का आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान है? तो भगवद गीता में कहा गया है, संयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति। जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं उनके लिए योग साधना बड़ा मुश्किल है। तो आध्यात्मिक जीवन की कोई भी प्रणाली हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी में भी इंद्रिय भोग, अनियंत्रित इंद्रिय भोग की संस्तुति नहीं की गई। असंयतात्मना, जो संयमित नहीं है, जिसका मन इंद्रियां वाणी वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भौतिक धरातल से उठकर के आत्मा के धरातल पर पहुंचना। जो इंद्रिय भोग है, जो मानसिक इंद्रिय भोग इत्यादि है, वो सब देहात्म बुद्धि के स्तर पे होता है और जितना ही अधिक उसमें संलग्न हुआ जाता है उतना ही हमारी देहात्म बुद्धि और दृढ़ होती जाती है। पुंसा स्त्रिया मिथुन भावमितम तयो हृदय ग्रंथि आमु। हृदय ग्रंथि बनती है जैसे जैसे हम इंद्रिय भोग के कार्यों में लिप्त होते हैं। तो जन्म होते ही तो इस भौतिक जगत में धीरे धीरे जब आयु बढ़ती है और युवावस्था प्राप्त होती है तो धीरे धीरे सभी कामनाएं प्रकट होने लगती हैं, लेकिन यदि उनको संयमित ना किया जाए शास्त्रों के निर्देश के द्वारा, उनको अनियंत्रित रूप से एंकरेज किया जाए, उसमें इंडल्ज हुआ जाए, तो क्या परिणाम होता है कि ये जो ग्रंथि है ये बहुत ज्यादा कैरी होती है। रूपा जी बोलते हैं जैसे हम गांठ लगाते हैं, फिर एक और गांठ, फिर और गांठ, फिर और गांठ, तो जितनी गांठ लगाते हैं उतनी वो गांठ मजबूत होती है, उसको खोलना बड़ा मुश्किल ज्यादा है। तो जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं उतनी ये देहात्म बुद्धि की हृदय ग्रंथि मजबूत होती जाती है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए वास्तव में इच्छुक है, मुमुक्षु है, उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त होना आत्महत्या के समान है, उससे कभी शुभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहां पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि या तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, या तो उसे कृष्ण भक्ति का मार्ग लेना होगा, या तो ये कठिन तपस्याओं का मार्ग लेना होगा। ऐसा नहीं कि मन बनाया हुआ, मन में बनाया हुआ तथाकथित योग या ध्यान का मार्ग से काम चल जाएगा, जो कि आजकल बहुत अधिक प्रचलित है ध्यान करना, लेकिन उद्देश्य है इंद्रिय भोग करना, शरीर को बलिष्ठ बना करके अधिक इंद्रिय भोग करना, अपनी इंद्रिय भोग की क्षमताओं को वृद्धि करना, वो हिरण्यकशिपु का मार्ग। उसने तपस्या की अधिक इंद्रिय भोग के, लेकिन हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, लेकिन वर्तमान समय में तो मात्र एक दिखावा किया जाता है, तपस्या भी नहीं की जाती। हिरण्यकशिपु जंगल में गया और शरीर को कष्ट दिया, लेकिन वर्तमान समय में तथाकथित जो ध्यान है उसमें तो बिल्कुल कष्ट नहीं दिया था, केवल कुछ समय के लिए एक लाइट के ऊपर ध्यान करके और कुछ एक दिव्य कुछ ज्योति दिख रही है ऐसा कुछ मान करके, और कुछ योगासन की जाते हैं तो जैसे प्राणायाम की विधि के माध्यम से अनेक रोगों का उपचार किया जाता है और उससे शरीर कुछ बलिष्ठ हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो त्याग तपस्या की विधि को ही पालन नहीं करते। यहां पर तपस्या के क्या क्या अंग दिए गए हैं कि अपनी वाणी और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि हम एक घंटा तो सुबह में योग साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन फिर पूरा बाकी का समय हम इंद्रिय भोग में अपने को लिप्त कर रहे हैं, तो ये अग्नि को जला रहे हैं और पानी फेंक रहे हैं, ऐसा हो गया। तो इसलिए कभी भी ऐसे जो लोग हैं वो अपनी इंद्रियों को दमित नहीं कर पाते हैं, उनकी इंद्रियां और बलिष्ठ होती जाती हैं और इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित करती रहती हैं उनको। यहां लिखा है वीर्य स्खलित ना होने देने का वो प्रयास करता है। तो ब्रह्मचर्य ये यहां पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग बताते हैं, तो वहां पर अष्टांग योग पद्धति में यम नियम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य बताते हैं। तो इंद्रिय विषयों से मन को दूर रखने के लिए और आगे आने वाली जो कठिन तपस्या है, योग साधना इत्यादि है, उसके लिए शरीर को हष्टपुष्ट रखने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वीर्य है उसके अंदर अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो हम खाना खाते हैं उसका जो तत्व बनते हैं अलग अलग प्रकार के, मज्जा और मज्जा के बाद में वीर्य बहुत ही वो फिल्टर होकर के जो शक्ति है वो अंततः वीर्य में जाके संकलित होती है। इससे वीर्य स्खलन करना मतलब जैसे खून की 64 बूंद तो वीर्य की 1 बूंद, क्योंकि वो फाइन है, बहुत उसका कंसंट्रेटेड है एनर्जी। खाना इतना सारा उसमें से थोड़ा थोड़ा खून बनेगा, फिर और फिल्टर होकर बहुत अंत में जाकर के वो वीर्य में परिवर्तित होता है। तो इसलिए वीर्य स्खलित करने से जो ये शरीर की बहुत महत्वपूर्ण ये शक्ति है वो नष्ट होती है, और यदि वो नष्ट नहीं की जाती है, जिसको ऊर्जा रेतक कहते हैं, तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वो परिवर्तित होती है, ऊपर की ओर चलती है। यदि नीचे की ओर स्खलित नहीं किया जाता है तो वो वीर्य जो है वो ऊपर की ओर जाता है और बुद्धि मस्तिष्क को और शरीर के पूरे सभी अंगों को शक्ति प्रदान करता है, तेजस प्रदान करता है, ओजस प्रदान करता है, ओजस में परिवर्तित होता है वो, जिससे शरीर के सभी अंगों को शक्ति तो मिलती है, लेकिन विशेष रूप से बुद्धि को ऐसी शक्ति प्रदान होती है, प्राप्त होती है, जिससे वो आध्यात्मिक विषयों को समझ सके। तो ये योग साधना जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में जो केवल ध्यान का जो केवल मात्र एक बाहरी दिखावा किया जाता है हम उसका परिणाम देखते हैं कि कभी भी उससे आध्यात्मिक प्रगति उनकी नहीं हो पाती है, ना तो उनका उद्देश्य होता है, क्योंकि वो सभी अंगों को नहीं ले रहे हैं, मनमाने ढंग से कुछ ले रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो योग साधना है उसका उद्देश्य है प्रत्याहार, अर्थात इंद्रिय विषयों से अपने मन को और इंद्रियों को हटाना, ना कि उसमें अधिक लिप्त होने के लिए प्रयास करना या उसके लिए बल प्राप्त करना। जैसा विवेकानंद बोलते हैं कि हाथी जैसा होना चाहिए बल, जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए हाथी जैसा बल होना चाहिए, मांस खाओ, तो ये सब मन घड़न कहानी है। यहाँ पर स्पष्ट हम ऋतु महाराज के उदाहरण से देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया, मन को वश में किया, अपने वाणी को वश में किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, ये सब उन्होंने किए। तो बिना तपस्या के कोई प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। ऋषभदेव तो कई कहते हैं कि सूअर की तरह से कठिन इंद्रिय भोग के लिए कठिन कार्य करते हुए कभी भी कुछ शुभ प्राप्त नहीं किया। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। दिव्य तपस्या की जरूरत है। तो तपस्या की जो आवश्यकता है वो कोई भी अधिकृत योग पद्धति में स्वीकारणीय है। तपस्या का अर्थ है स्वयं अपनी इच्छा से इंद्रिय भोग में लिप्त ना होना, बल्कि उनके विषयों को दूर रखते हुए इंद्रियों को कष्ट देना, उसे तपस्या कहते हैं। फिर अभी दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी महाराज तो भगवान के महान भक्त थे, शक्ति आवेश अवतार थे, तो उन्होंने क्यों तपस्या की? हम सामान्य रूप से देखते हैं कि एक तो है योग साधना का मार्ग और एक है भक्ति का मार्ग। नारद मुनि कहते हैं आराध्य तो यदि हरिश तपसा तथा, यदि आप भगवान के भक्त हैं आराधना कर रहे हैं भगवान की, तो भी तपस्या क्या जरूरत है? ना आराध्य तो यदि हरिश तपसा तथा किम, और यदि आपकी तपस्या से आप भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर क्या इस तपस्या का महत्व क्या रह गया? श्रम वही केवलम हो गया। तो पृथु महाराज तो शक्तिया के सरकार हैं, भगवान के भक्त हैं वहां, तो वो क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो तपस्या और भक्ति में क्या संबंध है? भक्तों के लिए तपस्या का अर्थ क्या है? तो पृथु महाराज के द्वारा जो तपस्या की गई और जो नारद मुनि कह रहे हैं ना आराध्य तो यदि हरि तपसा था किम, जिस तपस्या में हरि लक्ष्य ना हो, उन दोनों में अंतर है। जो पृथु महाराज तपस्या कर रहे हैं उसका लक्ष्य कृष्ण में अपनी मति को स्थिर करना है। उनकी तपस्या का हेतु है इंद्रियों को दमित करना, मन को शमित करना, जिससे वो अपने चित्त को कृष्ण में लगा सकें। उनकी तपस्या का उद्देश्य ये है, इसलिए वो श्रम ही वही केवलम नहीं है। जिस तपस्या का उद्देश्य ये नहीं होता है, कृष्ण में अपने मति को लगाना नहीं होता है, निराकार ब्रह्म में अपने मन को लगाना या भौतिक कुछ कामनाओं की प्राप्ति के लिए तपस्या करना होता है, वो श्रम ही वही केवलम। जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि दो पद्धतियां हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोसेस जो है, उसमें जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है उसके अंतर्गत व्यक्ति ही कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण उसके अंतिम उद्देश्य नहीं होते हैं। वनस्पत इसके अलावा अन्य उसका उद्देश्य होता है ब्रह्म में लीन होना, लेकिन ब्रह्म में जो लीन होना उद्देश्य जिसका है, वो जो मार्ग में तपस्या है वो प्रारंभ से अंत केवल कष्टप्रद रहती है। क्योंकि मान लिया आप ब्रह्म में लीन हो गए, आप ब्रह्म में लीन हो गए बहुत कठिन तपस्या के बाद भी, लेकिन यदि अंततः जब तक आप कृष्ण भक्त नहीं हुए, तब तक जिस स्तर तक भी आप पहुंचे वो सब निरर्थक है, फेलियर। क्योंकि क्या लाभ होगा उसका? ब्रह्म में लीन हो गए, सो वॉट, क्या मिला उसको? आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंती अदा, यू विल कम डाउन अगेन, दोबारा आप नीचे गिरेंगे। इतना कठिन तपस्या करके आप ब्रह्म में लीन हुए, लेकिन एक्चुअली यूजलेस, क्योंकि कभी भी आप कभी भी नहीं, आपको फिर नहीं होगा। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो उसका क्या यूज है? जैसे ही आप नीचे गिरेंगे इस भौतिक जगत में, आप दोबारा आएंगे तो अगेन जैसे बाकी लोग हैं वैसे आप हो जाएंगे। इतनी कठिन तपस्या करके आप वहां पहुंचे, जैसे वो फेरी व्हील इतने ऊपर गए, बहुत ऊपर गए, लेकिन फिर बाद में नीचे आ गए। जब नीचे आ गए खेल खत्म हो गया, नीचे उतर के सब लोगों के साथ। तो ऊपर गए थे अभी, लेकिन नीचे आ गए। तो फिर जब नीचे आ गए तब वो और आप बाकी लोग जो ऊपर गए नहीं, वो एक से हो गए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रह गया। तो जब भी परिणाम टेम्परेरी होता है किसी भी चीज का, तो वो निरर्थक होता है, क्योंकि हम नित्य हैं। इसलिए अनित्य कोई भी चीज हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी देवताओं से वर प्राप्त होते हैं वो अनित्य होते हैं, इसलिए वो व्यर्थ है। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं, कम बुद्धिशाली लोग हैं, वही ऐसे टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं। इसीलिए जो तपस्या कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर रही है, उस तपस्या का क्या लाभ? तपस्या छोड़िए, उस नैष्कर्म्यम अच्युत भावहीन से नैष्कर्म्यम अपि न शोभते। नैष्कर्म्यम अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म में लिप्त ना होना, यदि उसमें भी अच्युत भाव नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, तो वो भी न शोभते, वो भी बेकार है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जहां पर भगवत भक्ति नहीं है, ऐसा जाति उच्च कुल में जन्म लेना, शास्त्रों का अध्ययन, जप और तप, जो भक्ति से विहीन है, वो सब मंडनम लोकरंजनम अप्राणस्य देहस्य मृत देह के रंजनम, उसको मंडनम, उसको डेकोरेट करने जाता है, यानी निरर्थक है। डेड बॉडी को डेकोरेट करना निरर्थक, वैसे तो जीवित बॉडी को डेकोरेट करना निरर्थक है, लेकिन ठीक है, भौतिक जगत की संदर्भ में उसका कुछ महत्व हो सकता है। जो व्यक्ति उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है वो ठीक है, उसको एटलीस्ट स्वच्छ रखना, लेकिन जो मृत देह है, कितना भी आप उसको स्वच्छ रखने का प्रयास करें उसको, लेकिन वो तो सड़ेगा ही, अंततः सड़ेगा ही, वो याद नहीं रख सकते उसको, साथ सज्जा करके उसको, उसका कोई वास्तविक यूज नहीं। तो उसी प्रकार से जो भी तपस्या, तप, शास्त्र अध्ययन, दान इत्यादि जो भी कुछ है, वो सब निरर्थक है यदि वो अंततः भगवत भक्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं है, या इंडायरेक्ट प्रोसेस में जहां पर लक्ष्य कृष्ण भक्ति नहीं है, तो ठीक है, प्रगति हो रही है, जो कर्मकांड से ऊपर जाता है, ज्ञान मार्ग में आता है, ज्ञान से ऊपर जाता है, ध्यान करता है, लेकिन जब तक भक्त नहीं बना तब तक उसकी सिचुएशन रिस्की है। जिस समय नीचे गिरा उस समय बेकार हुआ, जब तक कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसकी स्थिति कुछ नहीं, जीरो है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय नीचे गिरते सब यूजलेस हो जाएगा। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, आराध्य नाराध्य तो यदि हरि तपसा भाति। जिस तपस्या का उद्देश्य भक्ति नहीं है, या जिस तपस्या से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं हुई, वो तपस्या उस समय तक निरर्थक गिनी जानी चाहिए। इसलिए इंडायरेक्ट प्रोसेस में जो लोग जा रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि रिस्की लाइफ है। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक यूजलेसली एंडेवर कर रहे हैं। हाँ, जब भक्ति प्राप्त कर लेंगे तब उनके सभी एंडेवर यूजफुल हो जाएंगे। जैसे ही भक्त बने तब उनकी सभी तपस्या सभी सफल हो गई, उससे मान जाए। लेकिन यदि उसी समय वो सफल मानी जाएगी, तो अगर पहले से ही ये भक्ति कर रहा है बिना तपस्या करे, तो पहले से ही वो तो सिद्ध है। तो इसलिए कहा गया है, आराध्य तो यदि हरि सप्ताह बता के, यदि आप पहले से ही भक्ति में लग रहे हैं तो फिर उस तपस्या की क्या आवश्यकता है? तो फिर प्रश्न ये उठता है कि यहां पर प्रभु महाराज क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो कृपया तो ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज्ञो मखई द्वापरे परिचर्यात्मकम कलौ तदहरि कीर्तना। भगवान की भक्ति सेवा के लिए ही विष्णु की आराधना भी अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से होती है। इसलिए कृतयत ध्यायतो विष्णु कहा गया है। जो कृत यानी कि सतयुग में जो ध्यान योग था वो निराकार ध्यान योग नहीं था, उसकी बात नहीं हो रही है, निराकार पे ध्यान की बात नहीं हो रही है। कृतयतो ध्यायतो विष्णु, विष्णु के ऊपर ध्यान की बात। तो यहां पर जो पृथु महाराज योग साधना कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कृष्णया, कृष्ण को प्रसन्न करना। वो ध्यान योग से कृष्ण के ऊपर ध्यान करने के लिए उसी प्रयोजन से कर रहे हैं, और अंत में समाधि का उनका जो लक्ष्य होगा, समाधि स्तर में वो या ध्यान के स्तर पर वो कृष्ण का ध्यान करेगा। तो वो भी करना प्रावधान है। ध्यान योग जो है वो भक्ति के लिए करना वो प्रावधान है, वो गलत नहीं है, वो सतयुग में था, दैट वॉज अ बोनाफाइड प्रोसेस। इसलिए योग साधना करना बोनाफाइड नहीं है, ऐसा नहीं। योग साधना करना, तपस्या करना, इस प्रकार से अष्टांग योग करना वो बोनाफाइड है, लेकिन अलग एज के लिए, तृतीय सतयुग के लिए, वर्तमान के लिए नहीं। वर्तमान में कलौ तद हरि कीर्तनम। तो भागवतम में जहां 12वें स्कंद में यह श्लोक आया है वहां पर उद्धरण दिया गया है कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि कैसे इस कलयुग में ये जो योग साधना पद्धति सतयुग के लिए बोनाफाइड थी, वर्तमान समय के लिए नहीं, क्योंकि संभव नहीं है वर्तमान कलयुग में वो अष्टांग योग पद्धति करना। अतः कलौ तपो योग विद्या यज्ञादिका क्रिया सांगा भवन्ति न कृता कुशले अपि देहि। Thus, in the age of Kali, the practices of austerity, yoga, meditation, deity worship, sacrifice, and so on, along with their various subsidiary functions, are not properly carried out even by the most expert embodied souls. वर्तमान समय में जो बहुत दक्ष हैं, कुशलैर अपि देहिभिः, जिन्होंने देह प्राप्त किया इस कलयुग में, उनमें जो कुशल हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं, वे भी कलौ तपो योग विद्या यज्ञादिका क्रिया सांगा भवंती ना कृता, अच्छे से नहीं कर पाते तपस्या क्या, क्योंकि देह इस प्रकार का है, वातावरण इस प्रकार का है कि कलयुग में चाहते हुए भी, सिंसियरली चाहते हुए भी कोई व्यक्ति सामान्यतः इस योग साधना को नहीं कर सकता है, जिसका प्रमाण अर्जुन है। जैसा कल समझता होगा अर्जुन नकार दी, नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये महत्वपूर्ण कि वर्तमान समय में हालांकि ये योग साधना बोनाफाइड प्रोसेस है विष्णु आराधना के लिए, लेकिन वहां समय के लिए पॉसिबल नहीं। फिर आगे तो क्या है फिर बोनाफाइड प्रोसेस, तो फिर क्योंकि हर एक युग में भगवत प्राप्ति तो संभव है, तो कलयुग में तो क्या बताया गया है, कलर दोष निधे राजन, इसलिए तो कलयुग दोषों का सागर है। लेकिन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय, कृष्ण के कीर्तन से परम मुक्ति संभव है। तो वर्तमान समय में तपस्या का नियम तो काबिल तो एप्लीकेबल है ही, तपस्या के बिना तो योग साधना संभव है ही नहीं, लेकिन कैसी तपस्या कलयुग में, तो उसके बारे में बताया गया है, तथा जैवोत्तम लोके तपा श्री हरि कीर्तनम। कौन सी तपस्या, श्री हरि कीर्तनम, ये तपस्या, तपस्या जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते रहे और योग साध लेंगे, कलयुग का मतलब ये नहीं है। कलयुग में सब है, कलयुग में तो आप तपस्या संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में तो इंद्रिय भोग करो और भगवत भक्ति भगवत धाम प्राप्त करो, ऐसा नहीं। तो तपस्या तो जरूरी है ही, इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक जीवन सांप और नेवले जैसा है, वो कभी आपस में दोनों भाई एक साथ नहीं रहते, क्योंकि दोनों का आधार अलग है। एक देहात्म बुद्धि को बढ़ाना है, गांठ को बढ़ाना है, और एक कर्म बंधन निषिद्धनम, कर्म बंधन को काटना है। भक्ति उससे बिल्कुल विपरीत है, आध्यात्मिक प्रगति उससे बिल्कुल विपरीत है। इससे कभी भी किसी भी युग में इंद्रिय भोग में लिप्त होना, उस मार्ग में आगे बढ़ना तो किसी भी युग में वांछित नहीं है, अवांछित है। लेकिन तपस्या का प्रोसेस अलग है। कलयुग में क्या तपस्या का प्रोसेस है, तथा चैवोत्तमम लोके, इन दिस वे द मोस्ट परफेक्ट पेनेंस, सबसे उत्तम तपस्या की विधि to be executed in this world is the chanting of the name of Lord Shri Hari. Shri Hari ka naam lena vartaman samay ke liye uttam tapasya hai. Especially in this age of Kali, one can satisfy the Supreme Lord Vishnu by performing sankirtan. Tat kalau sankirtan. So, tapasya se jo prayojan siddh hota hai, yani indriya bhog mein lipt na hona, wo sab prayojan vartaman samay mein ye hari kirtan ki tapasya se sambhav. Ye bhi tapasya hai. Kyon? Kyunki kise hari kirtan pasand hai? Hari kirtan kise pasand hai? Kaun karega hari kirtan? तो हरि कीर्तन आसान नहीं है, हरि कीर्तन तपस्या है. हम प्रयास करते हैं सब लोग, प्लीज चैंट हरे कृष्णा. रूपा जी का फेमस बोलेंगे कैंट कैंट कैंट, बट दे कैन नॉट चैंट चैंट. कठिन है, ये भी तपस्या है, बहुत तपस्या है. क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति पाप में जीवन में लिप्त रहता है और उसके उसमें रहना चाहता है, तब तक वो हरि कीर्तन नहीं कर सकता. हरि कीर्तन करना सरल नहीं है. जब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग की समस्त कामनाओं से मुक्त नहीं हो गया है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया है, तब तक वो शुद्ध हरि कीर्तन तो नहीं कर सकता. एक शुद्ध भक्त के हरि कीर्तन में और एक मायावादी व्यक्ति के तथाकथित हरि कीर्तन में धरती आसमान का अंतर. वास्तव में उसका कीर्तन कीर्तन नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का कीर्ति नहीं हो रही है. क्योंकि निराकारवादी के हृदय में जो भावना है कि कृष्ण निराकार, परम सत्य निराकार है, कृष्ण माया है, इसलिए कभी भी वो कीर्तन तो कर ही नहीं सकता. कैसे? कीर्तन मतलब कीर्ति का गान. तो वो कैसे कीर्ति हुई कि कृष्ण भी एक भौतिक देह दान करके आते हैं, वो भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं. चलो वो नहीं भी कहते तो भी कृष्ण एक भौतिक देह दान करके आते हैं, ये उनकी अकीर्ति है. जब कृष्ण का अस्तित्व पूरी तरह से भौतिक कल्मश से मुक्त है, उसको कहना कि वो भौतिक कल्मश से ये कीर्ति हुई कि अकीर्ति हुई? ये अकीर्ति हुई, ये उनका ब्लास्फेमी हुई. इसलिए चैतन्य क्या कहते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी. वो कैसे कीर्ति हुई? तो कीर्तन तो हुआ ही नहीं. तो मात्र कृष्ण शब्द मुख से उच्चारित करना कृष्ण कीर्तन नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो दिव्य ध्वनि है वो कभी भी अशुद्ध मन से उच्चारित नहीं की जाती. इसलिए वास्तविक कृष्ण कीर्तन होठों से नहीं होता, जीवा से नहीं होता, वो हृदय से होता है. जिसका हृदय अशुद्ध है वो कभी वास्तविक दिव्य ध्वनि उच्चारित नहीं कर सकता. इसलिए भले ही मायावादी 24 घंटे कृष्ण कीर्तन करें, तथाकथित कृष्ण कीर्तन, लेकिन उनकी जो मुख से ध्वनि निकल रही है वो दिव्य नहीं है, वो भौतिक है. इसलिए उसका परिणाम, उसका प्रभाव दिव्य नहीं हो सकता. तो हम देखते हैं कि अनेक लोग हैं जो शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण कीर्तन में जुड़ते हैं और धीरे धीरे उनका प्रगति होता है, तो वो संभव है. अगर व्यक्ति हृदय में ये अपराध बुद्धि को धारण किए हुए नहीं है और उसको कल्टिवेट नहीं कर रहा है, नामाभास के स्तर में यदि नामाभास के स्तर पर नाम ले रहा है, वो इस पाप बुद्धि को संजोय नहीं है अपने हृदय में, उसको बलिष्ठ नहीं कर रहा है कि हाँ कृष्ण भगवान ईश्वर नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन बुद्धि भी नहीं है उसकी, निर्मल बुद्धि भी नहीं है कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से है, मैं उनका दास हूं, ये भी स्पष्ट रूप से उसके हृदय में स्थित नहीं है, लेकिन अपराध बुद्धि भी नहीं है, यानी बीच की स्थिति है, नाम अपराध. तो नाम अपराध स्थिति में यदि कोई भगवत नाम लेता है तो उसकी प्रगति होती है. लेकिन नाम अपराध के स्तर पर जब कोई व्यक्ति नाम अपराध नाम लेता है तो वो कीर्तन नहीं कर पाता. तो हम लोगों के लिए जो नाम है वो तपस्या है. रूप गोस्वामी के लिए तपस्या नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि दो कानों से और एक जीवा से मैं कैसे नाम लूंगा, इतना स्वाद है कि लाखों लाखों कान और जीवा होने चाहिए, तो उनके लिए तपस्या नहीं है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो शुद्ध भक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वर्तमान कलयुग में दिखाया गया है, या जो भगवान की विशेष कृपा से कलयुग में भगवान अपने नाम में प्रकट हुए हैं, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो वो तो ऐसा मार्ग है जो तपस्या है, लेकिन किस प्रकार की तपस्या? कि क्योंकि हम भक्ति में नियोजित नहीं है, इसलिए वो हमें तपस्या प्रतीत हो रही है, वास्तव में वो तपस्या नहीं है। जो कलयुग की तपस्या, जो पृथ्वी महाराज तपस्या ले रहे हैं, अग्नि अपने चारों तरफ प्रकटाना, देह को वास्तव में कुछ कष्ट देना, उस तपस्या में और हरिनाम की तपस्या में बहुत अंतर है। वहां पर तो जैसे जो वैकुंठ में या भगवत धाम में जाकर कोई अपने चारों तरफ अग्नि नहीं प्रज्वलित करता, करेक्ट? इसलिए प्रथम महाराज जो तपस्या ले रहे हैं, सतयुग में जो तपस्या थी वो एक मीन था, एक जरिया था केवल अपने मन को कृष्ण में केंद्रित करने का। वो तपस्या नित्य नहीं है, इसलिए वो एक तपस्या है एक प्रकार, क्योंकि भगवत धाम में ऐसा नहीं है कि हमको वहां पर भी तपस्या करनी पड़े। लेकिन जो हरि कीर्तन में जो तपस्या है वो तपस्या है नहीं, हमें तपस्या लगती है। जैसे जॉन्डिस जिसको है उसको मीठा कड़वा लगता है, वैसे ही हरिनाम की तपस्या तो हमें तपस्या लग रही है लेकिन तपस्या नहीं है। इसलिए इस तपस्या में और सतयुग के अंदर की गई ये तपस्या में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कलयुग में कहा गया है, कले दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणा, ये सतयुग से भी अधिक पुण्यशाली युग है कलयुग। इसलिए देवतागण इत्यादि सब इंतजार करते हैं कि कब उनको कलयुग में, जिस युग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उस युग में आने के लिए वो इंतजार करते हैं, क्योंकि इस समय में भगवत भक्ति प्राप्त करना सबसे अधिक सरल है। ब्रह्मा जी के एक दिन में सबसे सरल यदि भक्ति प्राप्त करना है तो इस समय में वर्तमान कलयुग में, इसलिए ये समय सबसे अधिक फॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए। इसलिए वो सब एक ही स्तर पे नहीं है, वो कहते हैं तो वो सतयुग का समय वो एकदम दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। इस समय प्रभुपाद जी कह रहे स्पेशली इन दिस एज कृष्णा हैज मेड दिस होली नेम पोटेंट। तो ये तपस्या नहीं है, और हमें जो तपस्या लग रही है उसे करने में महान और बहुत शीघ्र ही वो तपस्या लगना हमको बंद हो जाएगा, और बहुत आनंद आनंद में बोलो हरि भज वृंदावन, आनंद से भगवान का नाम ले। शुरू शुरू में थोड़ा आनंद नहीं लगेगा, ऐसे तो प्रारंभ से ही कुछ हम आनंद का आस्वादन करना प्रारंभ कर देते हैं, कि कैसे महादावाज निर्वापनम के रूप में प्रथम आनंद आस्वादन करने लगते हैं, कि कम से कम जो भौतिक जगत में इंद्रिय भोग प्राप्त इंद्रिय भोग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट हम अनुभव कर रहे थे, अपने हृदय जो जल रहा था हमारा, कम से कम वो तो एकदम तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि हमारा मार्ग बदल जाता है, हमारे हृदय का शुद्धि होता है, इंद्रिय भोग की वासना खत्म होने से अपने आप ही तो महान आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो पॉजिटिव नहीं है, पर नेगेटिव खत्म हुआ उससे आनंद अनुभव होता है, कि जो अग्नि दहक रही थी कम से कम वो शमित हो जाती है, जो काम क्रोध लोभ के द्वारा जो हृदय जल रहा था कम से कम वो पहले पहल तुरंत शीघ्र ही वो जलना बंद हो जाता है, और फिर भक्ति परेशान भव विरक्त रहना, फिर धीरे धीरे कृष्ण के नाम में उनकी सेवा में एक प्रकार का एक आनंद आना शुरू होता है, वो पॉजिटिव वो धीरे डेवलप होता है। तो इसीलिए एक वर्तमान समय चैतन्य महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जन का जो मार्ग है, जो हरिनाम से आश्रित है, उसमें प्रारंभ से ही अत्यंत सुख आनंद कंड, केवल आनंद कंड है, केवल आनंद का आस्वादन है प्रारंभ से ही। तो जो भी इस वर्तमान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो कठिन तपस्या हमको लग रही है, हमें समझना चाहिए कि वो बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है। और वो जो तपस्या लग रही है वो तपस्या नहीं है, वो केवल हमें तपस्या लग रही है, क्योंकि हम बीमारी से पीड़ित हैं। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ हमें चैतन्य महाप्रभु के इस महान महावदान न्याय जो अवतार हैं, उन्होंने जो हमको महान वरदान दिया, इसमें अपने को पूरा डुबोना होगा। श्रवणम और कीर्तन, प्रभुपाद इसमें इस तात्पर्य में जोर दे रहे हैं कि तपस्या कैसी तपस्या, श्रवण और कीर्तनम की तपस्या करनी है, 24 घंटे उसमें अपने को निमग्न करना है। तो वो तपस्या बड़ी आसान है, क्योंकि साथ साथ आपको आनंद मिलेगा, तो इसलिए उसको करना बड़ा आसान। वो जो तपस्या है वहां पर तो बहुत कष्ट लेकर के वो जरिया है, फिर धीरे धीरे होगा, लेकिन यहाँ बहुत शीघ्र है, बहुत आसान है। तो चैतन्य, तो श्री प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं यदि आप अपने को इस प्रचार आंदोलन में नहीं लगाएंगे तो बहुत जल्दी आप ये जो नाच रहे हैं हरे कृष्ण करते करते बंद हो जाएगा। इफ यू विल नॉट एब्जॉर्व योर सेल्फ इन दिस पिचिंग मूड, वेरी सून देर विल बी नो हरिबोल, ये जो आनंद से नाचना है ये सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सब तपस्याएं छोड़ दें कलयुग में तो कुछ नहीं होने वाला, तपस्या तो करना पड़ेगा। या तो प्रभु महाराज जैसी तपस्या करो या तो हरिनाम की तपस्या, दोनों में से कोई एक तपस्या लेनी पड़ेगी। अभी कौन सी चॉइस करना है वो हमारे हाथ में, लेकिन कोई भी तपस्या ना करें ऐसा संभव नहीं है। ना तो हरिनाम लेंगे बस, ना तो प्रचार में अपने को लगाएंगे इस आंदोलन में, बस टेक इट इजी, कलयुग है, हम कलयुगी जीव हैं, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी, 24 घंटे हरिनाम लेना पड़ेगा। तो अभी 24 घंटे हम हरिनाम हरिदास ठाकुर की तरह नहीं ले सकते, लेकिन प्रचार के माध्यम से 24 घंटे हम श्रवणम कीर्तन में अपने को लगा सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन बनाया है इसमें 24 घंटे प्रचार कार्य होता है, किसी न किसी रूप में हर भक्त का मन लग सकता है उसमें 24 घंटे। तो यदि हम अपने मन को ये तपस्या में नहीं लगाएंगे 24 घंटे तो माया अंदर एंटर कर जाएगी और फिर निराशा आ जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप उदास हैं तो मतलब आप माया में हैं, सिंपल सिम्टम, या माया में है कि नहीं। इफ यू आर अनहैप्पी दैट मीन्स यू आर इन माया, क्योंकि अगर आप कृष्ण भावना में है तो उदास हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये लक्षण है, पहला लक्षण ब्लिसफुल नहीं। सो इफ यू आर फीलिंग मोरोस दैट मीन्स यू आर इन माया, नो नीड टू आस्क एम आई इन माया, यू आर इन माया श्योर, बिकॉज संभव ही नहीं है। तो जब हम समझ रहे हैं कि हमारे हृदय निराश है, शंकाएं हैं, दैट मीन्स वी आर इन माया। और माया से हटने का उपाय है कि ये जो आंदोलन, ये जो आचार्य बता रहे हैं कलयुग में जो मार्ग, उसमें अपने को झोंकना पड़ेगा। जैसे प्रभु महाराज ने अपने को झोंका, झोंकना मतलब यू नो वी एब्जॉर्व, कॉम्प्लेसेंसी नहीं चलेगी। प्रभु महाराज सब कुछ कार्य किए अच्छे से और ये कार्य भी बढ़िया कर रहे हैं, परफेक्ट तपस्या कर रहे हैं, परफेक्ट। तो ऐसे ही हमें परफेक्टली करना होगा ये तपस्या, हरिनाम की तपस्या। जब कर रहे हैं तो उसमें अपने मन को ड्रैग करना पड़ेगा। अभी हम एक ईमेल पढ़ रहे थे, तो बोलते हैं ड्रैग द माइंड, अपने मन को लेके आओ। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे जब कर रहे हैं, मन जहां जा रहा है जाने दो, टेक इट इजी, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, फिर ब्लिसफुल नहीं रह सकते फिर हम। इसलिए वर्तमान समय में तपस्या बहुत सरल है, लेकिन वो कम से कम वो तो करना पड़ेगा ढंग से, तभी कर सकते। फिर एक अन्य विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां पर निकल के आया है। अधिकतर लोग ये प्रश्न करते हैं कि कृष्ण पूजा तो शुरू हुई 5 वर्ष के बाद जब कृष्ण आए, उससे पहले तो कृष्ण नहीं थे, तो फिर कैसे कृष्ण पूजा होती थी? इसका मतलब कृष्ण नित्य नहीं है, इसका मतलब कृष्ण तो कुछ समय के लिए आते हैं, इसका मतलब वो भी देह धारण करके आते हैं, इसका मतलब वही निराकार है जो कृष्ण रूप में प्रकट होता है, ये इसका सबूत है। लेकिन यहां पर हम उनको ये श्लोक देकर कह सकते हैं कि देखो पृथ्वी महाराज तो सतयुग में आए थे और उस समय में भी वो लाखों वर्ष पूर्व, कृष्ण के आने से लाखों वर्ष पूर्व भी यहां पर स्पष्ट इस श्लोक में लिखा गया है कृष्णम। ओह सॉरी, आरिधाभविष्यु कृष्णम। और एक्चुअली भागवत में शुरू से ही आए, तो पूरे प्रारंभ से ही राम, इससे कोई कमी नहीं। तो ये सब श्लोक हमको याद होने चाहिए उस समय हमको, हम लोग श्लोक कोट करने से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में मैं गया तो लोगों ने एकदम से जब ये श्लोक देखे बुक्स के अंदर, एक एक संस्कृत के श्लोक हैं, उसका एक एक शब्द का अर्थ किया है, इमीडिएटली दे एक्सेप्टेड कि इट इज बोनाफाइड। तो पूरे जगत में ये मान्य है वर्तमान समय कम से कम कि भारत में जो ये भगवद गीता है, जो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो शास्त्र है, दैट इज हैविंग अथॉरिटी। इसलिए आप वही चीज बिना संस्कृत कोट किए बोलेंगे और संस्कृत कोट करके बोलेंगे उसका फर्क पड़ता है। संस्कृत कोट करके उसका अर्थ समझाना, उससे तुरंत उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। इसलिए प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए, उनको संस्कृत नहीं आती लेकिन फिर भी बोलते थे। तो भले ही वो नहीं समझ रहे हैं कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा, लेकिन समझ रहे हैं कि यह आदमी जो बोल रहा है तो कोई रूप उपचार नहीं बोल रहा है। तो ये जो भगवान कृष्ण की पूजा है ये नित्य है, सृष्टि के प्रारंभ से जन्मादि अस्वतः प्रथम भगवान भागवतम श्लोक जो वेद वेदांत सूत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर आगे हम देखेंगे उसे बताया गया कौन वासुदेव, देवकी ब्रह्म, देवकी पुत्र। सब तरह से उसको इंगित किया है, ऐसा नहीं कि हमारे स्वामी जी का नाम दिया है शास्त्र में कहीं पर, नहीं, उसमें सब तरीके से बताया गया है कि वो जो देवकी पुत्र है, वो जो वसुदेव के पुत्र हैं, वो जो गिरिवरधारी हैं, बहुत तरीके से जो नंद नंदन है, बहुत तरीके से उसको सब जैसे बायोडन होता है, फादर्स नेम, आयु और आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि यही आदमी की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। तो ऐसे ही सब प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसको निश्चित किया गया है कि हम किस कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम उसी कृष्ण की बात कर रहे हैं जो मुरलीधारी है, जो यशोदानंदन है, जो नंदनंदन है, सब तरीके से वो उसकी आइडेंटिटी फिक्स होती है। ये तो बहुत सारे लोग हैं कि हाँ हमारे बेटे का, हमारे उसका स्वामी जी का नाम भी कृष्ण है, उसका नाम भी शिव है, ये नहीं, किस देव के, बहुत सारे तरीके से कन्फर्म किया जा रहा है कि हम किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्लोक में ये बात सिद्ध होती है। ऋतु महाराज ने वो तपस्या की, तो हमें तपस्या करनी है हरिनाम तपस्या। हरे कृष्णा, ग्रंथ राशि में भागवतम की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्ण। उसमें नाम अपराध में
आपने कहा कि नामाभास में अगर कोई नाम लेते हैं तो उनकी प्रगति होती है, लेकिन नाम अपराध के स्तर पर प्रगति तो वैसे ज़्यादा से नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में बहुत से असुर नामापराध के स्तर पर होते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त होती है, और जैसे जनरली ऐसा कहा जाता है कि उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, और ये जो पुतना जी हैं उनको धात्री गति मिली, तो उनको वो सायुज्य मुक्ति है या नहीं है, और जिनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वो भगवान के देवी रूपों में विलीन हो जाते हैं, जैसे कृष्णा बुक में कहते हैं कि यू नो उनका सोल आ गया, स्पिरिट आ गया और इंटर्ड इन कृष्णस बॉडी, तो उस प्रकार का जो सायुज्य मुक्ति उनको मिलती है उनका पतन होता है क्या? जैसे प्रभुपाद भगवद गीता के पर्पस में कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं समटाइम दे फॉल डाउन, तो भगवान के शरीर में जो जाते हैं वो फॉल डाउन हो सकते हैं क्या? और नामापराध में बहुत से असुरों को प्रगति मतलब दे गेट मुक्ति लिबरेशन, सो हाउ
तो सायुज्य मुक्ति असुरों को प्राप्त होती है, लेकिन सायुज्य मुक्ति तो कृष्ण भक्ति से, वो तो जो निराकारवादी हैं उनको भी मायावादी, जो ब्रह्मवादी हैं उनको भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो तो वास्तविक मुक्ति नहीं है, वो तो केवल एक भ्रम है मुक्ति का, क्योंकि पतन दिया था नीचे गिरते हैं, इसलिए वास्तविक मुक्ति नहीं है वो तो। तो जो नाम अपराध, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है स्पष्ट है, वो तो कभी वैकुंठ भगवत धाम भगवत आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। जो ब्रह्म ज्योति है वो आध्यात्मिक जगत में है भी और नहीं भी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में है इसलिए क्योंकि माया के तीनों गुणों से परे है, बीच में है, लेकिन क्योंकि वहां से नीचे आना पड़ेगा, इसलिए एक से वास्तव में नहीं है, क्योंकि वहां पर सिचुएशन हमारी परमानेंट नहीं हुई, इसलिए अंततः तो आना पड़ेगा, इसलिए वास्तव में उसको हम परफेक्टली स्पिरिचुअल तो नहीं कह सकते, क्योंकि नित्य वहां नहीं रह सकते। तो सायुज्य मुक्ति जो है वो इस प्रकार से भक्ति से के आसपास भी नहीं है। अभी जो पूतना को, उसको तो धात्री का स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि जब बलि महाराज की बहन थी वो, तब जब वामन अवतार के रूप में भगवान आए थे, तब उन्होंने भक्ति भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ था कि मैं इस शिशु को दूध पिलाऊं। तो भगवान ने ये जो उन्होंने भक्ति जो उनकी थी, भक्ति कार्य था, उसको भगवान ने ध्यान में रखते हुए उनको अपने धात्री का स्थान दिया। जो अन्य असुर हैं, या जैसे महाभारत के युद्ध में जो अनेक सैनिक मारे गए, उनको भी भगवत धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान को जब उन्होंने देखा, वो दुर्योधन की पार्टी में थे, लेकिन उनके हृदय में कोई कृष्ण व्यक्ति को लेकर के कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था, दुर्योधन के साथ में इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान के सुंदर रूप को देखा तो वो अप्रिशिएट किया, कितने सुंदर है। तो मरते समय में भगवान का दर्शन करते हुए जो अप्रिशिएशन भगवान को किया, वो उनको कारण बना जाने का। तो नाम अपराध के स्तर में कोई है तो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, केवल नामाभास के स्तर पे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मुक्ति के अनेक प्रकार हैं, सायुज्य जो मुक्ति है दैट कैन बी पॉसिबल, लेकिन जो वैकुंठ जगत में उनका भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, ये सब जो अन्य प्रकार की मुक्तियां हैं, ये प्राप्त नहीं होगी। और निश्चित रूप से भगवान की जो भक्ति सेवा है वो तो नाम अपराध के स्तर पर प्राप्त नहीं होगी, वो तो नामाभास के स्तर पर प्राप्त नहीं होगी, वो तो केवल शुद्ध नाम से प्राप्त होगी। जो शुद्ध भक्ति है वो केवल शुद्ध नाम से प्राप्त होगी, लेकिन नामाभास को जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे शुद्ध नाम में आने का उसका चांस है, लेकिन नामापराध के स्तर पर जो व्यक्ति ले रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नामापराध से शुद्ध नाम में नहीं आ जाता। चांसेस आर देयर ही कैन बिकम टू भक्तों के संग में आकर के और सुन करके कि ये नामापराध है, उसको ना करके वो नामाभास में आ सकता है, लेकिन नामापराध रहने से अपने आप उसमें अपने को बलिष्ठ करने से, व्हाट इज दैट श्लोक, कोटि जन्म तब न हो गए बहु जन्म करे यदि नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन तबु ना पाइवे कृष्ण पदे प्रेम धन। तो बहुत जन्मों तक भी यदि कोई नाम अपराध करेगा, नाम अपराध के स्तर पे नाम लेगा, तो कोटि जन्म पर भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो कोई आदमी आता है, हम उसको बोलते हैं प्लीज चैंट हरे कृष्ण, एक्चुअली हम लोग उसको साथ साथ ये बताते हैं कि किस कौन है कृष्ण, जिससे कि वो नाम अपराध में ना रहे। हम केवल नहीं किसी को बोलते हैं बस चैंट हरे कृष्ण, तो वो तो मायावादी भी हरे कृष्ण जप करते हैं, लेकिन यदि वो ये नहीं सुनेंगे कि कृष्णा ब्रह्मा शिव इत्यादि जैसे एक और देवता नहीं है, कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, तब तक वो नाम अपराध ही करेंगे, तब तक उनका प्रगति जो है वो शुद्ध नाम की शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं होगा।
Very nice you explained. You know this Pondraka in Krishna Lila, he was not like army of Mahabharata, and Mahabharata army, they were having appreciation for Krishna, and they were shifted in transcendental, that is Vaikuntha planets, not in Brahmajyoti. But that Pondraka, he was envious, he was rival of Krishna. He, you know, Prabhupada says that he got Sarupya Mukti, and sometimes he said that he got Sarupya because it was his desire to be like Vishnu. He was having four hands, you know, duplicate symbols, and he was saying that I am Vishnu. So sometimes, you know, it clicked in me, so I just wanted to confirm. Sometimes I heard it somewhere or read that he got Sarupya Mukti.
पौंडर के विषय में पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली, याद नहीं मेरे को इस समय क्या हुआ, लेकिन जो आप कह रहे हैं शरीर में मर्ज हो जाना, दैट इज वर्स देन मर्जिंग इन इम्पर्सनल, निराकार ब्रह्म में मर्ज होने से भी ज्यादा अधर है भगवान के शरीर में मर्ज होना, वो लिखा है रूपा जी बुक्स में, मोर डिग्रेडेड इवन टू, सो दैट इज लाइक नो फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ही हैज जस्ट रिमेन विदाउट सर्विंग कृष्ण. शरीर मर जाए क्या हुआ, इज नॉट सर्विंग कृष्ण. जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा, तो वो तो उसको नहीं मिला, मर्ज हो गया, क्या मिला उसको, बेकार हो गया.
पर्टिकुलर डीमन ही मर्जेस इन कृष्णस बॉडी, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, देन हिज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड हिज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यू नो दैट इज द अप्रूवल द जीवा मे बी द डीमन और डेमिगॉड, ही इज कॉल्ड अ मार्जिनल एनर्जी इन टर्मिनोलॉजी. So his individual existence is finished, or you know, as we say in Karmakachai Vishnu, after manifestation and annihilation, the jivas they get, you know, in annihilation, after in manifestation, in annihilation, they are in the belly of Karmakachai Vishnu. So such demons who go in Krishna's body, when they come out all like that, or they are forever there, or they get their individual existence later on.
अभी जो लोग प्रलय पे भगवान के शरीर में जाते हैं उनके कंपैरिजन में आप कीजिए, तो वो लोग जो भगवान के शरीर में अपनी तीव्र इच्छा है भगवान में मर्ज हो जाने की, तो जब दोबारा से सृजन होगा तो वो लोग की तो भगवान के शरीर में जाने का कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बहुत ही जगत की इच्छा है, तो उनको दोबारा चांस मिलेगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शरीर मिलेगा और उसके माध्यम से उनको चांस मिलेगा फिर दोबारा भक्ति करने का. पर जो आदमी अपनी तीव्र इच्छा से भगवान के शरीर में ही मर्ज हुआ है, तो नहीं, भगवान चाहते हैं कि उसको शरीर मिले, वो अंततः भक्त बने, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, उसको इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए. सो ही विल हैव लेस चांसेस टू कम आउट अगेन एंड सर्व, यू नो, फॉर मोर टाइम ही माइट बी बीइंग देयर. जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुसार उसको रहेगा. सो इज मोर अनफॉर्चुनेट, दिस डिजायर टू मर्ज इज मोर अनफॉर्चुनेट देन टू डिजायर मेटेरियल, यू नो, प्लेजर्स, क्योंकि मेटेरियल प्लेजर्स से तो उसको चांसेस आर देयर कि ही विल गेट अ बॉडी एंड ही मे कम इन कॉन्टेक्ट विद वैष्णव, लेकिन जिसकी मर्ज होने के रंग ही वेरी रिमोट चांसेस, इट्स मोर इन वर्स.
भगवान के दिव्य देह में मर्ज होना किस प्रकार से ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? आप बोल रहे हैं ज्यादा समय, लेकिन एग्जैक्टली इसको किस प्रकार से समझा जा सकता
है? प्रभुपाद बोले इट्स मोर अबॉमिनेबल, मतलब that enviousness, that desire, that ki, you know, I will be one with him, that, you know, एक तो है कि हाँ आप जानते हैं कि भगवान का स्वरूप है और फिर भी उसमें ही मर्ज होना चाहते हैं, इट्स लाइक इट शोज ग्रेट एनवियसनेस.
एक भगवद गीता से मैं अभी दूसरे अध्याय के प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहा हूँ भगवद गीता में, तो प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं कि जीवा वो एकदम बेसिक थिंग्स बताते हैं उसमें, लेकिन ये मूड दिखाते हैं कि आपको भगवान ने शरीर ये मार्जिनल एग्जिस्टेंस दिया है कि उनकी सेवा आप कर सके, उसके लिए आनंद वर्धन के लिए आपके और उनके खुद के, तो इसलिए वो विस्तार करते हैं अपना जीवों में. लेकिन अभी आप अगर चाहेंगे कि आपको नहीं चाहिए ही नहीं, कुछ भी करके नहीं चाहिए, तो ठीक है आ जाओ ब्रह्म ज्योति में ले लेंगे या अपने आप में ले लेंगे, तो उस प्रकार से मतलब शायद वो उसकी तरफ भी.
कुरुक्षेत्र में जो योद्धा थे सब, वो भगवान का जो दर्शन किया जिसमें ऐसा भाव नहीं था, तो उनको
नहीं था
जो ऐसा अप्रिशिएट करते थे रूप को, तो वो सांतस को प्राप्त हुए ना, या फिर कोई भी क्योंकि वो सेवा भाव तो नहीं था ना. जनरली ऐसे सुना है कि जो लोग भगवान के रूप को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन सेवा भाव नहीं है, वो शांत को प्राप्त करते हैं. ऐसे ऐसे
रंगाश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय.